ये रूहानी बाप है, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज देते हैं। देने के लिए मुख तो चाहिए ना, कृष्ण को कोई रूहानी बाप थोड़े ही कहेगा है। सतयुग में कृष्ण जब जन्म लेगा तो उसका रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? कृष्ण को जन्म देने वाला रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? है, जिस्मानी बाप होगा। हाँ, कृष्ण को जो जन्म देने वाला है उसको जन्म देने वाला रूहानी बाप हो सकता है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की डायनेस्टी को जन्म देने वाले सब कैसे बाप होंगे? सब जिस्मानी होंगे। अगर जिस्मानी न हो तो कलाओं में नीचे उतरना बंद हो जाए। जो भी देवताएं हैं जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है, क्योंकि जिस्मानी बाप हैं। बल आत्म की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आत्म की स्थिति में रहते हुए भी देह के सुख भोगते हैं। जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो एक ही ऐसा है जो रूहानी बाप से जन्म लेता है, उसका कोई भी जिस्मानी बाप नहीं। तो ये रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप मैं ही हूं, मैं ही गाइड बन सकता हूं रूहों की दुनिया में ले जाने के लिए। कृष्ण कौन सी दुनिया में ले जाएगा है? कृष्ण सतयुग में आवेगा तो कौन सी दुनिया में ले जाएगा? देह अभिमानी की दुनिया में आता है और देह अभिमानी की दुनिया में जाएगा। संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी वो देह के साथ जब तक पुरुषार्थ करता है उसको रास्ता बताने वाला रूहानी बाप नहीं मिलता। मिलता भी है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा, जो कृष्ण की अंतिम चोला है, उसने क्या पहचाना कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ बताने वाला रूहानी बाप है? नहीं पहचाना। तो रूहानी बाप को नहीं पहचाना इसलिए दूसरों को रूहानी ज्ञान भी नहीं दे सकता। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप तो मैं हूं, मैं ही तुम्हारा गाइड बन सकता हूं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाला गाइड है, लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, एवर प्योर है। एवर प्योर किस आधार पर? बिंदी को एवर प्योर कहेंगे क्या? बिंदी एवर प्योर और बिंदी एवर इम्प्योर, इसका कोई मतलब हुआ? एवर प्योरिटी और एवर इम्प्योरिटी किस आधार पर साबित होती है? शरीर के आधार पर। शरीर में प्रवेश करके अनेकों के संग के रंग में आता रहे और फिर भी नीचे न गिरे, कोई का संग का रंग न लगे, अपने संग का रंग औरों को लगाए, उसको कहेंगे एवर प्योर। सब मेरे लिए कहते हैं एवर प्योर। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहा हूं, बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको ये नॉलेज देता हूं, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉडफादर, उनका रूप भी बताया है। गॉडफादर का असली रूप है बिंदी। मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो बिंदी नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। तो जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, तो ये एक प्रकार की कुदरत है, इसको कहेंगे बड़ी कुदरत। इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है जो अविनाशी है, इसको भी कहा जाता है कुदरत। इस कुदरत का वर्णन कैसे करें, कितनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर के बड़ी बंडर खाते हो। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, वो स्टार तो फिर भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है, ये स्टार तो इन आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता, कैसे दिखाई पड़ता है। ये आत्मा रूपी स्टार तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है। 84 जन्म एक्यूरेट आत्मा भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी, कौन सी आत्मा, जो पक्का आत्मिक स्टेज का रूप धारण करेगी वही 84 जन्म भोगेगी। पक्का आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेगी तो 84 जन्म नहीं भोग सकती। तो आत्मा में मेरी दू ही नॉलेज भरी हुई है, ये नई बातें हैं। नए मनुष्य सुनकर के कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों में नहीं है, फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है वही आकर के समझेंगे, सुनेंगे समझेंगे, वर्षा लिया है तो लेंगे, वही बच्चे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। ऐसे बच्चों की वृद्धि में फिर टाइम लग जाता है, कितना टाइम हो गया अभी, ये नॉलेज सुनाते सुनाते 70 साल हो गए, 70 साल में कौन कौन कह सकते हैं कि हम सूर्यवंशी बने हैं? तो देखो कितना टाइम लग जाता है। प्रजा तो ढेर बनती रहती है, एक धर्म की प्रजा बनती है कि अनेक धर्मों की प्रजा बनती रहती है। जो ब्राह्मणों की सृष्टि में प्रजा बन रही है वो एक धर्म की प्रजा बन रही है या अनेक धर्मों की प्रजा तैयार हो रही है? एक धर्म की। यहां नारायणों की आत्मा तैयार हो रही है कि नहीं? जो नारायण 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो नारायणों की आत्मा यहां सेवा कर रही है या नहीं? वो नारायणों की आत्मा जब सेवा करेगी तो अपने धर्म वालों की सेवा करेगी या दूसरे धर्म वालों की सेवा करेगी? अपने धर्म वालों की सेवा कर रही है तो उनके धर्मों की वृद्धि हो रही है या सूर्यवंशियों की वृद्धि हो रही है? सूर्यवंशियों की वृद्धि तो अंत में होती है, जब पूरे सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाती है। सूर्य की प्रत्यक्षता में टाइम लग जाता है, प्रजा तो ढेर बनती रहती है और वो प्रजा बनाना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़ों, मेगा प्रोग्राम, इनसे क्या बनी प्रजा, बनी या राजाएं बने? प्रजा बनी, प्रजा तो बड़ी सहज बनती है, राजा बनने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है, एक एक को बैठ समझाते हैं तो उनको आप व्यभिचारी ज्ञान मिलता है, आप व्यभिचारी दृष्टि का फोर्स मिलता है, आप व्यभिचारी वाइब्रेशन का फोर्स मिलता है, तो प्रजा तैयार होने में सहज है और राजाएं तैयार करने में मेहनत है। एडवांस में क्या करना पड़ता है और बेसिक में क्या करना पड़ता है? एडवांस में एक एक आत्मा में आत्मा को निकालने के लिए क्या नियम है? अकेले को बैठ के समझाना पड़ता है, अकेले को बैठ के कोर्स देना पड़ता है, तब फोर्स आता है। और बेसिक में बेसिक में कोई नियम नहीं, सात दिन की भट्टी का भी कोई नियम नहीं। इसलिए बेसिक में कहेंगे प्रजा निकाली। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या हायर क्लासेस में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है और हायर क्लास में पढ़ने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। ऐसे ही यहां भी है, एडवांस में पढ़ने वाले ढेर निकलते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, एडवांस में बहुत थोड़े निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही निकलेंगे जिन्होंने बेसिक की शिक्षा ली हुई है, चाहे इस जन्म में ली हो और चाहे पूर्व जन्म में ली हो। कोई कोई समझते हैं हम तो नए आए हैं, हम तो बेसिक में चले ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई एडवांस में नहीं आता जो बेसिक से शिक्षा लेकर ना आया हो। इस जन्म में नहीं ली होगी तो पूर्व जन्म में नहीं ली होगी, पूर्व जन्म में भी नहीं ली होगी तो कम से कम राम बाप वाली आत्मा के संग में रहा होगा, वो संग का रंग लिया होगा, तो यहां आकर के 80 साल का भी होगा और वो भी एडवांस ज्ञान ले सकता है। तो बोला देर प्रजा बनती रहती है वो तो बहुत सहज है, राजा बनने में मेहनत लगती है। मनुष्य जो बहुत दंडदान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म लेते हैं, या फिर कौन से धन की दान की बात है? हैं? यहां जो ज्ञान धन ज्यादा देंगे तो बड़े राजा बनेंगे, थोड़ों को ज्ञान सुनाया होगा तो छोटे राजा बनेंगे, ज्ञान नहीं सुनाया होगा तो राजा नहीं बनेंगे। कोई राज परिवार में जन्म लेंगे, जन्म लेंगे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। तो ये सारी शूटिंग यहां होती है। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं तो वो भी राजा बन जाते हैं। मान लो कोई में कम ज्ञान है, कम ज्ञान वाला भी दूसरों को सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान देता है तो वो भी राजा बन सकता है। ज्ञान दूसरों को सुनाने से अपना ज्ञान पक्का हो जाता है, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। जिनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा वो फिर पक्का होता जाएगा। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी जास्ती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो ज्ञान भी कम उठाएगा, जिसने विविचारी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी विविचारी उठाएगा, अनेकों से सुनेगा। जिसने अविविचारी भक्ति की होगी वो एक से ही सुनेगा, अनेकों से नहीं सुनेगा। तो सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठाएगा, तमो प्रधान भक्ति की होगी तो तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो उनको बहुत मिल जाता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे, उनको अपने धन में ममत्व रहता है। साक्षात्कार भी गरीबों को ज्यादा होते हैं, वो ही दान पुण्य करते हैं, राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार बहुत रहता है, यहां भी बाप आकर के गरीबों को 21 जन्म का सुख दे देते हैं। गरीब जास्ते हैं कहां, यहां एडवांस में गरीब जास्ती है या बेसिक में गरीब जास्ती है? एडवांस में गरीब जास्ती है और वहां वहां भक्ति में धनवान जास्ती है। साहूकार पिछाड़ी में आवेंगे। जो भारत इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, ये बातें तुम समझते हो। आज चुके एक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे। जब आर्थिक एक होगा तो जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो भी गरीब बन जाएंगे। अभी तो अहंकार में चूर रहते हैं। सारी दुनिया में रावण राज्य हो जाता है, हाहाकार हो जाता है, फिर ऐसी चीजें रह नहीं सकेंगी। अति होती है तो अंत हो जाता है, क्योंकि हर चीज की आयु तो होती है ना, हर चीज का समय लुधा हुआ है। सदा एक सा समय किसी का रहता नहीं है। राम राज्य भी बदलता है तो रावण राज्य भी बदल जाता है। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान भी बड़े बड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। बेसिक नॉलेज में क्या अर्थ समझेंगे इसका है? तो समझेंगे हाँ सोने के ही होते होंगे, लेकिन वेद के अर्थ में सोना माने सच्चाई। सोना का युग कौन सा होता है? सत्ययुग। सत्ययुग में सत्य ही सत्य होता है। तो जो सच्ची आत्माओं का संगठन तैयार होगा वो संगठन ही किला कहा जाता है। ये संगठन रूपी किला बाप आकर के तैयार करते हैं। मार्बल के मकान होंगे बड़े बड़े। मार्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। क्या? जो ज्ञान के जीवन में आकर के एक के संग में मरमर के जीते हैं। कैसे जीते हैं? ऐसे जीते हैं जैसे कि मरे हुए। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं जीते जी मर जाओ। ईश्वरीय ज्ञान में चलना, 100% श्रीमत पर चलना, ऐसे है आज की दुनिया में जैसे कि जीते जी मर जाना। तो ऐसे जो जीते जी मरने वाले हैं, संग में रह रह करके बाप का संग का रंग लगाते हैं, जीते हुए मरते हैं, ऐसे का संगठन जो तैयार होता है वो संगमरमर का मार्बल का संगठन कहा जाता है। संगठन माने किला। किला कहो मकान कहो बात तो एक ही है। सोने के मकान तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उनकी बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनावेंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ समझते हैं कि वो ही मकान होंगे। आगे चल करके तुमको इन सब बातों का साक्षात्कार होता जाएगा कि नई दुनिया में कौन से मकान बनेंगे। स्थूल मकानों की बात है या संगठन रूपी किलों की बात है? संगठन रूपी किले तैयार होते जाएंगे। अच्छा ओम शांति। आज की वाणी पहली मार्च 2001 का तीसरा पेज का अंत, इसमें बात चल रही थी स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुए हैं, अभी है संगम युग, सतयुग में ही नारीज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है, लक्ष्मी नारायण बने ये राज्य किसने दिया? अभी तुम बच्चों को मालूम है कि इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। यही पढ़ाई पढ़ करके स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर के महल आदि बनाते हैं। महल कहो, किला कहो, संगठन कहो, जो सर्जन होते हैं वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। पहली मार्च दो हजार एक की वाणी का चौथा पेज, बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाई रहे। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना और रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की जैसे दरकार ही नहीं। बाप को कभी भी देह अभिमान हो नहीं सकता, तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है।
जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं वो या बहुतों का कल्याण करते हैं। देह अभिमान में परिचय देते हैं तो वो कल्याण ही करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आ जाते हैं, लड़ना झगड़ना, नबाबी से चलना, ये सब देह अभिमान है। बल अपना राजयोग है तो भी हमको बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है, कोई घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी कि हम ये घड़ी पहने, उसका ख्याल आज चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, बुद्धि योग उसमें जाता रहेगा, गुम हो जाएगी तो ख्याल आवेगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। न देह याद आए, न देह के संबंध याद आए, न देह का कोई पदार्थ याद आए। ये देह अभिमान की आदतें हैं जो पद भ्रष्ट करती रहती है, फिर सर्विस के बदले और ही डिससर्विस जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है, देह के संबंध, देह की वस्तुओं में तुम्हारा बुद्धि योग भरमाया है। अभी बाप आए हैं कहते आत्मा अभिमानी बनो, देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर के भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं ना, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण करने में भले अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। कोई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, डिससर्विस ही होती रहती है। देह अभिमान लून पानी बना देता है, कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर के पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत है कोई सपूत है। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार ईमानदार बच्चा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये इस महीने का संदेश है 6/5/2007 का, गुलजार दादी द्वारा। आज बाप दादा के पास जाना हुआ, जाते ही क्या देखा कि बाप दादा सामने खड़े हैं और दूर से ही नैनों की दृष्टि है, वो दृष्टि दे करके पास बुलाए रहे हैं। मैं भी स्नेह में समाई हुई सन्मुख पहुंच गई। ये मिलन तो अनोखा विचित्र मिलन, ये आप सब जानते ही हैं। बाद में बाबा बोले बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। मैं बोली बाबा आज तो सब बच्चों की आशा आपने पूर्ण कर ली। क्या रही होगी सब बच्चों की आशा, आपने सब बच्चों की आशा पूर्ण कर ली। हमारी मीठी प्यारी दादी जी मधुबन में आराम से अच्छे से पहुंच गई। आपने कहा था योग लगाओ तो आपकी दादी आपके पास आ जाएगी। बाबा बोले देखा आप बच्चों की याद, साइलेंस की शक्ति ने आशा पूरी की ना। अनुभव किया कि याद अर्थात साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। महत्व को जाना, आपकी दादी आपके पास पहुंच गई, क्योंकि बाप दादा और आप सभी जानते हो कि दादी तो मधुबन का बहुत बड़े से बड़ा कोहिनूर, कोहिनूर से भी हीरे में अमूल्य हीरा है, मधुबन का सच्चा श्रेष्ठ श्रृंगार है। सर्व परिवार के दिलों की प्यारी और बाप की दुलारी है। सबसे दिल के प्यार और सहयोग के सबूत सपूत श्रेष्ठ बच्चा है। अब बाप दादा बच्चों से एक आशा रखते हैं कि हर एक बच्चे को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ये विश्व में प्रत्यक्ष करके दिखाना है कि साइलेंस की शक्ति क्या क्या कर सकती है। चाहे स्वयं के संपन्न जीवन में व विश्व के कल्याण में इस विशेष लक्ष्य को रख मन से प्रयोगशाला में प्रयोग करने लग जाओ। अब तक वाणी द्वारा स्नेह संपर्क द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाया, उसकी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अभी अंतर्मुखता की गुफा में रह साइलेंस की शक्ति के प्रभाव को इस शक्ति के प्रभाव की प्रत्यक्षता को विश्व को अनुभव कराओ। ये रिसर्च करनी है और करानी है। जैसे साइंस लाइट और माइट द्वारा अपना रूप दिन प्रतिदिन सूक्ष्म में सूक्ष्म प्रत्यक्ष दिखाई रही है, ऐसे आपकी शक्ति तो अति शक्तिशाली दिव्य लाइट माइट से भरपूर बिंदु की शक्ति है। तो हरेक बच्चे का हर प्रकार का समाधान और सफलता में प्रत्यक्ष प्रयोग और फल दिखाई दे, विश्व के प्रति भी समाधान स्पष्ट हो, तभी साइलेंस की शक्ति का महत्व विश्व को मालूम होगा। और साइलेंस की शक्ति ही बाप को प्रत्यक्ष ऑटोमेटिकली करेगी। समय तो अति की चैलेंज कर रहा है, इसलिए अब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। जो साइलेंस की शक्ति नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं है जो साइलेंस की शक्ति न कर सके। साइलेंस की शक्ति द्वारा हर कार्य प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के प्यार को मुबारक देते हैं, अब प्यार और शक्ति स्वरूप का बैलेंस प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात हर सब्जेक्ट में बैलेंस द्वारा हर कदम में ब्लेसिंग के अधिकारी बनना है। अब बचपन के संस्कार स्वभाव के खेल को दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्ति का समारोह कर दृढ़ता द्वारा सफलता की नेचर को नेचुरल बनाओ। मनन रहो मगन की ज्वालामुखी अंतर्मुखी याद से साइलेंस की कमाल प्रत्यक्ष दिखाओ। ऐसे कहते बाप दादा बहुत मीठी प्यार की दृष्टि से सर्व बच्चों को जैसे सन्मुख दृष्टि द्वारा याद प्यार और दुआएं दे रहे थे। बाद में मैंने दादी जानकी की याद दी और फॉरेन समाचार सुनाया कि सब तरफ भारत और फॉरेन से स्वर्ण नीति का संगठन कर रहे हैं। बाबा बोले जनक बच्ची तो सदा उमंग उत्साह में रहती है और ईश्वरीय नशे में रहे अपने उमंग द्वारा सबका उमंग बढ़ाना, ये बच्ची का नेचर है। सदा बाप को साथ ही बनाए रहना, ये अनुभव भी नेचुरल है। उसके बाद बाप दादा ने दादी के साथ सेवा में रहने वाली मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, निर्भर भाई, ईशु बहन और अन्य साथियों को याद दी और कहा, सबने बहुत अथक हो दिल के इसने सहयोग से सेवा की, वर्तमान में सेवा का फल सर्व की दुआएं प्राप्त की और भविष्य पुण्य भी जमा किया। इसलिए हर एक को नाम सहित स्पेशल प्यार और दुआएं देना। विशेष बॉम्बे वाले बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक दे। बाबा बोले, अपने प्यार की विशेषता अच्छे दिल से निभाई। ऐसे कहते सर्व की दृष्टि देते लेते, हमको भी दृष्टि और मुस्कुराहट की दिव्य मूर्ति से विदाई दी। ओम शांति। बाप दादा का संदेश दादी जी को सुनाया तो दादी ने बहुत प्यार से सुना और रिपीट किया। हमने कहा, दादी आप भी सभी सेंटर्स के लिए अपना संदेश दिखाओ, तो दादी ने अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए। दादी जी के शब्द यहाँ लिख रहे। बाप दादा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत दिल से प्यार। इस प्यार की तुलना कहो, वैल्यू कहो, कोई कर नहीं सकता। बाप दादा और सभी आप शुभ भावना और बड़े प्यार की दुआएं मिली, इससे तन भी ठीक रहा, मन भी ठीक रहा। ऐसे बाबा को और आप सबको कितना प्यार करूं। कितनी बड़ी बड़ी भाकी पहनूं जो मैं ठीक होकर के अपने मधुबन में आ गई। रिटर्न में सबको प्यारे बाबा को भोग खिलाना और आप सब भी मिलकर के ब्रह्मा भोज खाना और खिलाना। दादी तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है, ऐसे नहीं अगले जन्म में बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो तो तुम नई दुनिया के मालिक बन जावेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। सुखदाम का मालिक बनने के लिए माम एकम याद करो। अभी तुम ये याद करो कि मैं आत्मा भी स्टार हूं, मेरा बाप भी स्टार है। मनुष्य समझते हैं वो बाप सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप में हूं। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता हूं। तुम तो मनुष्य सृष्टि के बीज नहीं हो, मैं बीज हूं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। चैतन्य बीज को जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते होते तो उनके पास उनको जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई नहीं जानते।
पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पर जीत पहनो, यही तुमको आदि मध्यंत दुख देता है। आदि में कब दुख दिया? द्वापर का आदि हुआ तो विकारों की उत्पत्ति हुई। जो आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई वो आदि में इस्लाम धर्म का दुख, दुख की दुनिया में कन्वर्ट हो गई। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस्लाम धर्म का असर पड़ जाता है। आदि में दुखी होते हैं तो मध्य में भी दुखी होते हैं, और इन पांच विकारों का अंत होता है अभिसंगम में। जब अंत होता है तब भी उन विकारों की चपेट में आ जाते हैं। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे वो प्रैक्टिकल में यहां चपेट में आ जाएंगे। जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे वो यहां प्रैक्टिकल में चपेट में आ जाएंगे। हिसाब है तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्ष्य को याद करो। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है, बच्चे भल स्वर्ग में आएंगे परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, जरूर बाप भी होगा। जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगावेंगे वो ऊंच पद पावेंगे। तो पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी नहीं हो सकते। क्यों? सब ब्राह्मण बच्चे एक जैसे पुरुषार्थी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्राह्मण ही एक कुरी के नहीं होते हैं, नौ कुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। और आजकल की प्रैक्टिकल दुनिया में भी देखे जाते हैं, ये कुरियां कहां बनी? संगम युग में ये कुरियां तैयार होती हैं। जो जिस कुरी का ब्राह्मण होगा वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा। ऊंचे ते ऊंची कुरी सूर्यवंशी का होगा तो एक बाप को फॉलो करेगा, और कोई मनुष्य की मत की चपेट में आ न सके। ये स्कूल बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या जो सारी दुनिया को सुखधाम और शांति धाम बनाए देवे? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है, बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वो सभी त्योहार अभी संगम युग के हैं, संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता में वास्तव में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, बात सब प्रारब्ध भोगते हैं, त्योहार सब यहां मनाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में दुखी रहते हैं तो दो एक दिन त्योहार मनाकर सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अल्पकाल की खुशी ले लेते हैं। नई दुनिया में तो रोज ही त्योहार त्योहार, रोज ही उत्सव है। होली और धुलिया ये सब ज्ञान की बातें हैं। विकारों की होली तुम यहां जलाते हो, ज्ञान की धुलिया तुम यहां मनाते हो। 10 मार्च 2001 की वाणी का चौथा पेज, जो कुछ भी पास्ट हुआ उसके साथ त्योहार तुम अभी मनाते हो। रंग होता है ना, धूल की तरह उड़ाते हैं,
धुलिया उसको बोला जाता है,
अनेक प्रकार के रंग उड़ाते हैं, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, सात रंग होते हैं ना। नारायण कितने होते हैं? विधर्मी नारायण सात नारायण नहीं होते, नारायण तो नौ भी होते हैं, लेकिन विधर्मी कितने होते हैं? सात नारायण। तो धुलिया भी तुम यहां मनाते हो, इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। षष्ठी भी नहीं बन जाती है, पुरानी दुनिया खलास भी हो जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, अनेक बार लिया है और अनेक बार गमाया है। अभी खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे, हम कोई देहधारी से वर्षा नहीं ले रहे हैं। तो औरों को भी रास्ता बताना है, ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी जरूर है, होनी जरूर है। 70 साल हो गए, अभी भी होनी जरूर है। कितना लंबा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि और जो धर्मखंड स्थापन हुए हैं उनकी चपेट में जो आने वाली आत्माएं हैं वो यहां संगम युग में भी आकर के विघ्नकारी बन जाती हैं, और स्वर्ग स्थापन होने के बदली और ही ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बनाई देती है, वैश्यालय बनाई देती है। इसलिए बाप कहते हैं कि ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। काई के बाद, कलयुग के बाद, कलह कलेश के युग के बाद सतयुग जरूर होना है। पहले काई की शूटिंग होगी, पहले अति काई की होगी, कलह कलेश के युग की अति होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर सतयुग स्थापन जरूर होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बनना चाहिए, बजना चाहिए, है? अभी हमारा समय पूरा होता है, हम जानते हैं, हम जाते हैं शांति धाम, अभी हमारा अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। क्या कर्म भोग माना शरीर का जो बीमारी आदि आती है, उस बीमारी में जो दुख की भोगना पड़ती है, वो भी ईश्वरीय ज्ञान के नशे में रहने से हल्की हो जाती है। बाप की याद में रहने से हल्कापन आता है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हमारा हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप, तुम बच्चों को धैर्य देते हैं, अभी तुम्हारे सदा सुख के दिन आने वाले हैं। अभी तो क्या होता है, कभी दुख और कभी सुख। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह, पैसे तो चाहिए। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो हम बहुत दान करेंगे। तो यहां भी बाप समझाते हैं, कोई दो पैसा देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है, बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न अगले जन्म में मिलता था, अभी तो 21 जन्मों के लिए तुमको एवजा इसी जन्म में मिल जाना है। आगे साधु संत आदि को देते थे, वो तो सब भी कर्म करने वाले थे, अभी तो तुम बाप को देते हो, जो सब पाप कर्मों का हरण करने वाला है। अभी तुम जानते हो ये सब पैसा आदि धन संपत्ति आदि खत्म हो जाने वाली है। दुनिया वाले तो इस बात को नहीं जानते हैं। अभी मैं तुम्हारे सन्मुख आया हुआ हूं, अभी मैंने कब हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में सन्मुख आया हुआ हूं। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझेंगे, सन्मुख आया हुआ है या चला गया? वो समझेंगे चला गया, आया था, दीदी दादियों को दादाओं को सन्मुख मिला और हमको सन्मुख मिलने का नसीब नहीं हुआ। परंतु तुम्हारी बुद्धि में क्या, उनके जो सन्मुख आया वो बाप नहीं था, वो बाप का रूप नहीं था जिससे वर्षा मिले, वो मां का रूप था। तो अभी मैं तुम्हारे सन्मुख आया हुआ हूं, तो अभी इस कार्य में लगाओ, तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तो तुम गुरुओं के द्वारा इनडायरेक्ट देते थे और अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं। जो डायरेक्ट बाप को देते हैं उनको 21 जन्मों की प्राप्ति होती है, गुरुओं को देते हैं और गुरु लोग अपने तरीके से उसे खर्च करते हैं अपनी मनमत पर, तो एक जन्म के लिए तुम्हारा भविष्य बनता है। बाकी जो कुछ भी है तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला, क्या लिख दो? सच्ची गीता पाठशाला, सच्ची गीता से सदगति, झूठी गीता से दुर्गति। सच्ची गीता झूठी गीता क्या जड़ गीता है? चैतन्य में है सच्ची गीता और चैतन्य में है झूठी गीता। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दोनों अभी मौजूद है। भक्ति मार्ग में होती है सिर्फ झूठी गीता और ज्ञान मार्ग में दोनों ही गीता की हमको पहचान है। सच्ची गीता के दिल पर एक निराकार बाप की छाप है और झूठी गीता के दिल पर साकार कृष्ण बच्चे की छाप है। तो भगवान वाच माम एकम याद करो, माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा एक बाप से मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।